हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 4। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण एवं श्रवण करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारणा बिंबफलदरोष्टा पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपदो क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कटेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुर्लङ्घयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 4। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूचि कहते हैं, पश्यन्त्यदुरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत् पश्यन्त्यदुरूपमादभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत् पश्यन्तदोरूपमादभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत् पश्यन्तदुरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत् पश्यन्तदुरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत् पश्यन्तदुरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादौ रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत् पश्यन्तदुरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत् पश्यन्त्यदुरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूढश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोलसत्। शब्दों का अर्थ देखिए, पश्यन्तदोरूपम् अद ब्रचक्षुषा। पश्यन्त्य अर्थात देखते हैं, अदोरूपम पुरुष का जो आदि पुरुष है उनका रूपम यानी रूप, अदभ्र अदभ्र क्या मतलब होता है पूर्ण। पश्यन तदोरूप अदभ्र चक्षुषा पूर्ण आंखें, बहुत सारी आंखें सहस्र पाद हजारों हजारों पांव, उरु यानी भुजाएं और भुज अनाना यानी कि यहाँ पर लिखा है ना भुजाना, इसका मतलब होता है हाथ तथा मुख। भुज मतलब हाथ, अनाना मतलब मुख। और अद्भुतम यानी बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। सहस्र हजारों, मूर्द मतलब शरीर, और श्रवण कहते हैं कान को, अक्षु आंखें, नासिकम यानी नाक, सहस्र सहस्र मतलब हजारों हजारों, मौली मतलब मालाएं, अंबर मतलब वस्त्र, और कुंडलो लसत, कुंडल मतलब जो कान में पहनते ना कर्ण आभूषण, उल्लसत मतलब चमकते हुए। अब यहाँ पर भगवान के विराट स्वरूप के विषय में बता रहे हैं सुत गोस्वामी, कहते हैं अनुवाद देखिए, भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों पांव, जंगाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। उसी शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं जो हजारों मुकटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत रहते हैं और मालाओं से सजाए जाते हैं। एक बार फिर से अनुवाद को ध्यान से सुनिए, भक्तगण अपने विमल यानी पूर्ण नेत्रों से, यानी कि अब यहाँ पर ये जो नेत्र लिखे हुए हैं जिससे दर्शन करना है भगवान के इस स्वरूप का, वो ये चर्म चक्षु नहीं हो सकते, यहाँ पर स्पेशल नेत्रों की बात की गई है, विमल नेत्रों यानी पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक नेत्र हैं तो उनसे दिव्य रूप का स्वरूप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए शास्त्र चक्षु चाहिए या फिर वो चक्षु होते हैं ना जो दिव्य चक्षु, उनकी आवश्यकता है। उससे भगवान के रूप का दर्शन करते हैं जिस कैसा भगवान है जिसके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। इस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं, वे हजारों मुकटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत होते हैं और मालाओं से सजाए जाते हैं। अत्यंत ही विराट स्वरूप भगवान का यहाँ पर दिखा रहे हैं सूत गोस्वामी कि वो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बहुत पश्यन्त अनुरूप अदभ्र चक्षुषा, यानी कि इन भौतिक चक्षुओं से नहीं देखे जा सकते क्योंकि वो कंप्लीटली आध्यात्मिक होते हैं और सर्वसमर्थ होते हैं। तो उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। यहाँ जो हमारी भौतिक आंखें हैं या भौतिक जो हमारी चेतना है वो भगवान के विषय में जानने में असमर्थ है। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति योग द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान हमें दर्शन देते हैं। यानी कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक विधि है, यहाँ पर प्रभुपाद जी उस विधि को भक्ति योग कहते हैं, जिसके कारण हम भगवान को, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अपनी इन भौतिक आंखों से हम इस भौतिक जगत की चीजों को भी डायरेक्ट से नहीं देख सकते, यानी कि डायरेक्ट से अगर देखते हैं तो उसको समझ नहीं सकते। जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो हमें कितना छोटा सा दिखता है, लेकिन वैज्ञानिक शास्त्रों के अनुसार हम जब पढ़ते तो हमें पता चलता है कि यह सूर्य इतना बड़ा है जिसके अंदर हजारों पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी पृथ्वी लोग जितने हजारों लोग समा सकते हैं। तो उसके लिए विधि क्या है, शास्त्र चक्षु। उसी प्रकार जब हम किसी इलेक्ट्रिक वायर को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक है ये ना, करंट है या नहीं है, हमें कुछ खबर नहीं पड़ती। लेकिन जब हम उसको है ना टेस्ट करते हैं, तो हमें टेस्टर से पता चलता है कि इसके अंदर है। उसी तरह से हर चीज को देखने के लिए, जानने के लिए, जैसे लकड़ी में अग्नि है लेकिन उसको प्राप्त करने की एक विधि होती है, उसी तरह भगवान को देखने के लिए भी एक विधि है जिसका नाम है भक्ति योग। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्त द्वारा ही दिव्य भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी बताते कि श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा बताया गया है। कहाँ बताया था? चैप्टर नंबर 11 टेक्स्ट नंबर 53 एंड 54 में भगवान ने इस बात की पुष्टि की थी। 53 में भगवान ने कहा था, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन शिष्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माम यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन शिष्यया, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस स्वरूप को दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या करने से, ना दान देने से, ना चेज्यया ना ही पूजा करने से जाना जा सकता है। शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, कोई भी इन साधनों से मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो प्रश्न उठता फिर कैसे देख सकता है? तो भगवान बताते 54 में अत्यंत ही सुंदर श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्यातनन्यया शक्य अहमेवं विदोषुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यातनन्यया शक्य अहमेवं विदोषुन, ये अर्जुन केवल अनन्य भक्ति, भक्त्वात्व अनन्य तो मना लेकिन भक्ति से, लेकिन खाली ऐसी भक्ति नहीं जैसे हम करते हैं जिसमें कितने सारे अन्य लोगों को भी प्रेम करते हैं। भक्ति का क्या मतलब होता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य। भक्त्या तो अनन्य भक्ति होगी जो समस्त सकाम कर्म के फल से, इंद्र तृप्ति की आशा से और ज्ञान की हर अचीवमेंट को साइड में रख के केवल कृष्ण को प्राप्त करना या कृष्ण को प्रसन्न करना जिस भक्ति का लक्ष्य होता है उसकी विषय में भगवान कहते हैं, भक्त्या तनन्या शक्य अहमेव विदोर्जुन। अहम एव विदोर्जुन, एव सिर्फ एक ही विधि है बेटा, दूसरी कोई विधि नहीं है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन, ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, दृष्टुम मतलब देखने के लिए, तत्त्वेन यानी वास्तव में समझने के लिए, प्रविष्टम प्रवेश करते यानी केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने यह क्लियर कर दिया कि यदि मुझे देखना है, मुझे समझना है, मुझे जानना है तो उसकी केवल एक ही विधि है, अनन्य भक्ति। तो उसी के विषय में श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति द्वारा ही दिव्य भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इसी तरह वेदों में भी पुष्टि है कि केवल भक्ति मानव को भगवान और भगवान की ओर ले जा सकती है और उसी से भगवान प्रकट होते हैं। अब वेदों में कहां पर? तो ब्रह्म संहिता बताते हैं, ब्राह्मण संहिता में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। प्रेम अंजन सुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजनाचरित भक्ति विलोचन जिनके नेत्रों पर भक्ति और प्रेम का अंजन लगा होता है और संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो हृदय के अंदर भगवान विराजमान है और संत जो है वो भक्तिमय प्रेम के अंजन से जो संचित आंखें हैं जो नेत्र हैं उनसे ही भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते हैं। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से उनकी पूर्ण आंखों से उनका दर्शन किया है। अब यहाँ पर श्री रूपा जी एक तथ्य बता रहे हैं कि देखो आप प्रेम का अंजन लाओगे किधर से, अब सबसे पहले तो आपके अंदर अनन्य भक्ति होनी चाहिए और अनन्य भक्ति से प्रेम का अंजन जब आप आंखों पे लगाओगे तब भी आप देख सकोगे ना भगवान को, तो उसके लिए क्या करना है। यहाँ पर श्री रूपा जी सरल विधि बता रहे हैं, हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है। जैसे अगर आपको भगवान को देखना है तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने पहले से ही अपने आंखों पर प्रेम का अंजन लगा रखा है और दर्शन किया है। जब वो उस दर्शन का साक्षात्कार तुम्हें कराएंगे तो उनके द्वारा श्रवण करने से आपके हृदय के जो नेत्र हैं उन पर प्रेम का अंजन लगेगा, ऐसे बताया ना, क्योंकि भौतिक नेत्रों से तो दिखेंगे नहीं, हृदय के जो नेत्र हैं उन पर प्रेम का अंजन लगाना है। तो वो लगेगा कैसे, कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा हम दिव्य ज्ञान को श्रवण करेंगे और जब दिव्य ज्ञान हृदय के अंदर जाएगा और हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगेगा तो हम भक्तों हम भगवान का साक्षात्कार करेंगे। जैसे महाराज श्री बता रहे थे कि किसी ने आके पूछा मुझसे कि आप सारा दिन बोलते हो भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम, तो क्या कभी देखा है भगवान को, भगवान को आपने देखा है जो आप इतना भगवान से प्रेम का ना राग आलापते हो। तो महाराज श्री ने कहा हाँ देखा है। तो बोला आप है ना सत्य बताओ, देखा है आपने जिस तरह से हम संत महात्मा को देखते हैं, जिस तरह से तुलसीदास को देखा है, जिस तरह से ना अलग अलग सूरदास जी को, या फिर नाम लेकर बोला जिस इस तरह का कभी भगवान को भी देखा है। तब महाराज श्री ने बोला हाँ देखा है। तो बोला मैं यकीन नहीं करता। तो बोला आप यकीन नहीं कर रहे हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा है मगर। तो बोला नहीं मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यकीन दिलाओ ताकि मैं भी यकीन तो करूँ। अब मैं आपके पास आया हूँ तो आप मुझे बताओ, तो जिज्ञासु था लेकिन जानना चाहता था कि वाकई वो साइंटिस्ट मतलब साइंस पढ़ रहा था और उसमें महाराज जी ने उन्हीं के वर्ड्स में उनको बताया कि आपने कभी देखा है कि सूर्य की रेंज क्या है, नापा है कभी आपने, आपने कभी देखा है कि मतलब जो भी वो बता रहे थे कि भाई इसके अंदर ये चीजें होती हैं, इसमें और H2O होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ये सब आपने कैसे जाना। तो बोले शास्त्र से पढ़ के, क्योंकि हमारे लेक्चरर्स बताते हैं कि ऐसा है तो हम उस पर विश्वास करते हैं। तो बोला जब आप भौतिक चीजों के लिए भी अपने शास्त्रों को जो आपके ना मतलब किताबें हैं उनके हिसाब से आप जानते हो, यानी कि श्रवण करके ही आप देख रहे हो, आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर ऐसा है, मैंने ये सुना तो मुझे पता चल गया। इवन जब हम कहीं पर मैच चल रहा होता है, हम रेडियो से सुनते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने उसका साक्षात्कार किया। जैसे वो अगर बोलता है कि वो है ना उसके हाथ में बॉल आई और बॉल बाउंड्री से बाहर, ऐसे उसने ये किया और उसने रन लगाया, तो फिर कैसे पता चलता है कि जो हमने श्रवण किया है वो एज इट इज हमें दिखता है। तो उसी तरह से देखने की विधि केवल आंख नहीं है, जितनी भी भक्ति की बाकी जितने भी चीजें हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हम कान से सुनते हैं, है ना। तो इसने यहाँ पर भी बताया कि जिन्होंने जिन व्यक्तियों ने अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप को की जानकारी के लिए ऐसे व्यक्तियों के पास जाना होता है जिन्होंने भक्ति के अंजन से उनकी पूर्ण आंखों से उनका दर्शन किया है। इस जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते, कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से ही देखा होता है या कुछ काम कर रखा है। जैसे अब आपने हमने कभी भी नहीं देखा कि एक सांप, मैंने अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा कि किसी ने सांप ने किसी को डसा हो और वो मर गया हो। ये तो टीवी में और इस तरह से सुना है कि है ना सांप डसता है तो मर जाता है, लेकिन खुद से नहीं देखा। लेकिन हमें पता है ना, सुन के हमने इस बात पर विश्वास किया। अब ऐसा तो नहीं करेंगे जाके हम शाम को कभी कभी डसवा के देखें कि देखो मैं मरता हूँ या नहीं मरता हूँ। उस बात पे विश्वास करना पड़ता है ना। अगर किसी ने देखा नहीं किसी को आग में जलते हुए, तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो जला के देखे कि मुझे, बस सुना कि आग जलाती है तो जलाती है। तो यहाँ पर भी श्री रूपा जी बोलते हैं कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से ही देख रखा होता है। यदि सांसारिक वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषय में यह पूरी तरह लागू होती है। दिव्य तो वैसे ही अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी जो प्राकृत इंद्रियां हैं वो भगवान को समझने में बिल्कुल अक्षम है। अतएव केवल धैर्य तथा अध्यवसाय से ही, मतलब श्रवण और अध्ययन के से ही परम सत्य यानी परम सत्य संबंधी दिव्य विषयों तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। ये भगवान के विषय में जो भी अनुभूति है वो श्रवण करके और अध्ययन करके ही समझी जा सकती है। ये हमारी इंद्रियों का विषय है ही नहीं। इंद्रियों से हम कैसे समझेंगे कि एक ही भगवान है, उसके असंख्य नेत्र हैं। असंख्य मीन्स अनकाउंटेबल, किसी की काउंट नहीं किए जा सकते हैं ऐसे नेत्र एक ही व्यक्ति के कैसे सोच सकता है कोई। अनकाउंटेबल उसके हाथ हैं, भुजाएं हैं, ये सब हमारी इंद्रियों के विषय नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है केवल अध्ययन और श्रवण से। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए दिव्य रूप से युक्त होते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि जो नव दीक्षित हैं उनके लिए रूप विहीन है। उनके लिए रूप विहीन कैसे है कि है ना, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति आए, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि शास्त्र कहता है बिन पग चले सुने बिन खाना, कर बिन करम करे विधि नाना, कि भगवान बिन पग चले सुने बिन खाना, कि वो बगैर पाँव के चलते हैं और श्रवण करते हैं बगैर कानों के। कर बिन करम करे, कर कहते हाथ को, और वो बोलते बगैर हाथों के कर्म करे विधि नाना, बहुत बहुत कर्म करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भगवान निराकार है, क्योंकि ना वो बगैर पाँव के चलते हैं, बगैर कानों के सुनते हैं और बगैर हाथों के बड़े बड़े काम करते हैं। तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है उसके हाथ नहीं है, कान नहीं है और ना कुछ भी नहीं है, कान भी नहीं है और पाँव भी नहीं है। तो फिर महाराज जी बताए थे कि नहीं, इसका मतलब ये थोड़े कि वो निराकार है, इसका मतलब ये है कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनको कार्य करने के लिए अपनी इंद्रियों का जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह से इंद्रियों का यूज करें जैसे कि हम करते हैं। मतलब वो इतने सर्वसमर्थ हैं कि बगैर इंद्रियों को यूज किए भी वो कार्य कर सकते हैं। तो बोला ये तो मुझे समझ में नहीं आया, इंद्रियों को यूज किए बगैर कैसे कार्य करते। तो बोला ठीक है, देखो मैं अभी दिल्ली से वृंदावन आया लेकिन मैं बगैर पैरों के आया। तो बोला ऐसा कैसा, अब बगैर पैरों के कैसे आए। तो बोला मैं गाड़ी में बैठ के आया ना, मैं नीचे उतरा, गाड़ी खड़ी थी, लिफ्ट में नीचे उतरा, पाँव को यूज नहीं किया, गाड़ी में बैठा और सीधा वृंदावन में आ गया, मैंने पाँव को यूज नहीं किया। यानी कि अब हम भौतिक लोग हैं जो कि बगैर है ना हम सोचते हैं इंद्रियों के बगैर कार्य नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे साधन है कि बगैर पाँव के चले हम मैं आया। इसका मतलब ये नहीं मेरे पास पाँव थे नहीं, मेरे पास पाँव थे लेकिन मैंने पाँव को यूज नहीं किया, बगैर पाँव के यहाँ पर चल के आया। उस तरह भगवान इतने समर्थ है कि उनके जो अंग हैं वो इतने विशाल हैं। इस श्लोक में बताया पश्यन्तदुरूपमादभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतम्। मतलब जहां चाहिए वहां उनकी आंखें, अत्यंत बहुत सारी आंखें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर भगवान होंगे बस वहां पर दो नेत्र होंगे भगवान के, फिर यहाँ पर हम बैठे हुए यहाँ पर तो भगवान दिखते नहीं है, मतलब विग्रह नहीं है भगवान की, तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह पर जहां पर वो देखना चाहते हैं वहां पर उनकी आंख प्रकट हो जाती है, जहां पर वो कार्य करना चाहते हैं वहां पर उनके हाथ प्रकट हो जाते हैं, जहां पर वो श्रवण करना चाहते हैं वहां पर उनके कान होते हैं। यानी कि वो भगवान असीम है, वो इन भौतिक साधारण बुद्धि से समझने वाले नहीं है, इन साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते। पहले से ही बोल दिया पश्यन तदुरूपम अदभ्रचक्षुषा, देख लो पहले से ये बता दिया गया कि उस भगवान को इन भौतिक साधारण आंखों से नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि सहस्र मूर्ध श्रवणार्थिनाशिक, उसके हजारों हजारों आंखें हैं, हजारों हजारों कान हैं, हजारों हजारों नाक हैं, तो उनको इन दो आंखों से आप कैसे देखोगे? साधारण आंखों से आपको जो दिखता है वही समझ में नहीं आता। अब ये भगवान का दिव्य स्वरूप तो दिखता ही नहीं है, दिव्य है, और हमारी इंद्रियां प्राकृत हैं, तो हमारी प्राकृत इंद्रियों से हम प्राकृत जो भगवान की शक्तियां उनको ही नहीं समझ सकते, सूर्य को नहीं समझ सकते, चंद्रमा को नहीं समझ सकते, वायु को नहीं समझ सकते, अग्नि को नहीं समझ सकते, तो फिर भगवान को देख पाना या भगवान को समझ पाना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर बताते हैं चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर 11 टेक्स्ट नंबर 8, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं मतु माम शक्यसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमैश्वरम्। न तु माम शक्यसे, न मतलब नहीं तू मना, लेकिन माम मानी मुझे, शक्यसे यानी एबल, यू आर नॉट एबल टू सी मी, किसे दृष्टुम अनेनैव चक्षुषा, ये जो तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी जो भौतिक पदार्थ वाली आंखें हैं, उनसे मुझे देख पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तो क्या करूं? दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम यानी स्पिरिचुअल, जो भौतिक नहीं है दिव्य है, ऐसी ददामि यानी दे रहा हूँ, ते चक्षु तुम्हें आंखें, मैं तुम्हें वैसी दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, और क्या करो? पश्यमि योगमैश्वरम्, फिर मेरे योग ऐश्वर्य को तुम देख सकते हो। यानी भगवान ने कहा किंतु तुम मुझे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योगेश्वर्य को देखो। फिर देखने के जब भगवान ने ऐसा बोला, उसके बाद भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए, तो फिर क्या दिखा अर्जुन को? बहुत ही सुंदर अर्जुन बताते कि मुझे क्या दिख रहा है। 11:10-11 में बताया अर्जुन ने, अनेक वस्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यना दिव्यानेकाध्यतायुधम दिव्यमालाभरधरम दिव्य अंगानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम्। कि मुझे सब कुछ दिव्य दिख रहा है, सब कुछ अनंत दिख रहा है। अर्जुन ने उस दिव्य स्वरूप में क्या देखा? अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शन असंख्य मुख असंख्य नेत्र असंख्य आश्चर्यजनक दिव्य दृश्य देखे, अनेक दिव्याभरणम अनेक अद्भुतायुधम अनेक दैवी आभूषण अलंकृत थे, अनेक दैवी हथियार उतारे हुए थे, दिव्य माल्यम वरधरम दिव्य गंधानुलेपन दिव्य मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी दिव्य सुगंध लगी हुई थी और सर्वैश्वर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखं सब आश्चर्यजनक दिख रहा था, अनेक तेज था, असीम था, सर्वत्र व्याप्त था, लेकिन वो कैसे दिखा? दिव्य नेत्रों से। जब तक तो भगवान उसके सामने खड़े थे दिख रहा ही नहीं था कब से उसको, फिर जब भगवान ने दिव्य नेत्र दिए तो दिखा। इसका अर्थ ये है कि जब तक भगवान हमें दिव्य नेत्र नहीं देख सकते देते हैं तब तक हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीलाएं सब दिव्य हैं, तो हमारी इन भौतिक इंद्रियों से भगवान तक हमारी पहुंच, हमारी रसाई नहीं होती है। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता ही है कि जब हम भौतिक हैं, हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, हमारी बुद्धि भौतिक है, तो फिर हम भजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां तो भगवान को स्पर्श करने में असमर्थ हैं, तो फिर हम भजन क्यों करते हैं? तो आचार्यगण इसकी बहुत ही अत्यंत सुंदर एक व्याख्या देते हैं कि जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट है, ठीक है, वो मैग्नेट के अंदर पावर होता है, लेकिन वो तब तक लोहे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता जब तक कि लोहा एक रेंज तक उसके पास आए, है ना। ऐसे क्या करता है, लोहा आता है आता है आता है आता है, वो उसको आकर्षित नहीं कर रहा, फिर एक रेंज पर आकर ऐसा होता है कि लोहे के अंदर देखो चिपकने के पावर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, इसको महसूस करो कि लोहे के अंदर तो बिल्कुल भी चुंबकीय शक्ति नहीं है, लेकिन एक रेंज पर आकर ऐसा होता है कि मैग्नेट जो है वो इतनी तीव्रता से जाकर उसके ऊपर चिपक जाता है ना। आप भले उसको चिपकाओ नहीं, लेकिन उसको दूर रखो, थोड़ा सा इतना रेंज होता है, आपने इसको बहुत हमने अनुभव भी किया है बचपन में कि ऐसे करीब करते हैं करते हैं, फिर खुद ही आके लोहा उसके साथ चिपक जाता है। यानी कि वो चिपकाया किसने, मैग्नेट का पावर, पावर किसका था, मैग्नेट का ही था, लेकिन तब तक उस पावर को वो अटैक नहीं कर रहा था जब तक वो उसके करीब नहीं गया। इसी तरह से जब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के पवित्र नाम को जपते हैं जपते हैं जपते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि भगवान की कृपा हमारी समस्त इंद्रियों को दिव्य बना देती है। ये भगवान की कृपा से संभव है, ये हम अपनी इंद्रियों से केवल प्रयास कर सकते हैं। इंद्रियों, भगवान जो है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन प्राप्त केवल कृपा से होंगे और कृपा केवल प्रयास से प्राप्त होगी। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त होगी नहीं तब तक भगवान हमारी इंद्रियों से बहुत परे, लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमारी समस्त प्राकृत इंद्रियां अप्राकृत हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे अब हम क्या सोच रहे थे कि मैग्नेट ने उस लोहे को अपने ऊपर आकर्षित कर दिया जब वो एक रेंज तक उसके पास आया, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, एक साइड पे तो लोहा है, दूसरी साइड पे है ना मैग्नेट, लेकिन फिर भी अब उस लोहे के अंदर इतना चुंबकीय पावर आ गया है कि वो भी दूसरे लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जब वो उसके पास आएगा, एक रेंज तक उसके पास आएगा तो वो लोहा भी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसी तरह से जब गुरु महाराज अपनी साधना से भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं और हम जब गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करते हैं और उनके आदेशों का पालन करके उनकी ओर खींचते हैं खुद को, तो एक समय ऐसा आता है कि गुरु कृपा से हमारी जो इंद्रियां हैं वो अप्राकृत हो जाती हैं। इसलिए शास्त्र कहता है तीव्रेण भक्ति योगेना, जब तीव्र भक्ति योग भगवान के साथ भक्ति के साथ योग करते हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को, भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को देख सकते हैं अपनी दिव्य चक्षुओं से। संसार में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है केवल आंखों से देखने से नहीं होता है, बहुत सा ज्ञान ज्ञान की बहुत सी ऐसी विधि है जो केवल कान से ही सुनकर हम समझते हैं। जैसे हम कोचिंग में जाते हैं, शास्त्र में किताब में पढ़ते हैं, लेक्चरर्स लेक्चर देते हैं, वो से केवल हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बल क्या होता है? विश्वास का। लेक्चरर के आदेश पर यदि हम कार्य करते हैं या फिर उसको समझ रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो कन परफेक्ट है। लेकिन अगर हम ना उस किताब पर विश्वास कर रहे हैं और ना ही लेक्चरर के आना जो वो बता रहा है उसके लेक्चर्स पर हम करते हैं विश्वास करते हैं, तो हम कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते है ना। हम हर कोई चीज देख कर थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए जब हम ब्रह्म संहिता के पढ़ते हैं सुबह को दर्शन आरती में, एक दो उसके दो श्लोक पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, कि एक ही इंद्रिय से वो समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। पश्यन्ति यान्ति कलयन्ति चिरं, वो देख सकते हैं सुन सकते हैं उसी इंद्रिय से, भगवान नेत्रों से खा सकते हैं, कारणों से अना देख सकते हैं और मुख से सुन सकते, कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान है, भगवान की इंद्रियां हमारी तरह भौतिक नहीं, हमारी आंख के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो बात कर सके। हमारी आंख के अंदर इस संसार में किसी पुरुष की आंख के अंदर ये समर्थता नहीं है कि वो गर्भधान कर सके, लेकिन भगवान है, वो दृष्टिपात से प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो केवल दिव्य साहित्य को पढ़ने से, गुरु महाराज के आदेशों को सुनने से और गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने से ही हम समझ सकते हैं। इसी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमयते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज, के ब्रह्मांड में करोड़ों लोग घूम रहे हैं, किसी को भगवान के विषय में समझ में नहीं आता, लेकिन जब गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाती है, यानी कि गुरु और कृष्ण की कृपा का मैग्नेट जब आप जैसे लोहा, हमारे जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, तो वो लोहा भी कुंदन बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। तो यही इस श्लोक के विषय में हमने पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।